ভজন বল্লভ গিরিবর ধরি গোপীজন বল্লভ গিরিবর ধরি যশোদ নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যশোদ নন্দন ব্রজ জন রঞ্জন যমুনা তীরাবন চারি যমুনা তীরা বনচারি জয় রাধা মাধব কুঞ্জ বিহারি হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে সবকো আওয়াজ আ রহি না হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয় প্রভু পদা জয় প্রভু পদা নিতাই গৌর হরি বোল হরি বোল শ্রী শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি কালিয়া ধাম কি জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম। তো সবই আচার্যকে সন্তজনকে শিল প্রভুপাদ কে গুরুজনকে আশীর্বাদ সে কৃপা সে হামলোক অভি শ্রী বৃন্দাবন ধাম আ গে শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি জয়। তো ইস জগে কা নাম হালিয়া দেহ ইনি কালিয়া ঘাট ও বৃন্দাবন ধাম মে আতা হামযোগ যা বেঠে হুয়ে যমুনা কা কিনারা হ্যাঁ বলতে না যমুনা তীরা বনচারি যমুনা কা তীর হ্যাঁ পর বহু বিল্ডিং বনি হ্যাঁ যমুনা কা তীর যমুনা কে ঘাট পে বেঠে হমনে ইয়া তক পানি দেখা হুয়া হ্যাঁ বহু সাল পেলে। তো শ্রী বৃন্দাবন ধাম ভগবান কৃষ্ণ কা সবসে প্রিয় ধাম হ্যাঁ জিতনে ভি বন হ্যাঁ 137 বন উসমে সে 12 বন ভগবান কো অধিক পছন্দ হ্যাঁ উন 12 বনো মে সে 5 বন যমুনা জি কে উস পার হ্যাঁ 7 বন যমুনা জি কে ইস পার হ্যাঁ 12 বনো মে সে শ্রী বৃন্দাবন ধাম ভগবান কো সর্বপ্রিয় হ্যাঁ সবসে প্রিয় ভগবান কা বৃন্দাবন হ্যাঁ ये वृंदा देवी का यहाँ पर आधिपत्य है। राधा रानी ने वृंदा देवी की शादी भगवान से की थी और अपना वृंदावन उसको भेंट दिया था इसलिए इसका नाम वृंदावन है। तो वृंदावन तो अनंत लीलाओं का सागर है। हम लोग जब इस रास्ते से आए ना ये जो रास्ता है इसको परिक्रमा पथ कहते हैं परिक्रमा पथ। जहाँ से हम हमारे इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर निकले ना वो सब परिक्रमा पथ है। ऐसे गोल घूम के फिर हमारा हॉस्पिस आया वहाँ से और हमने टर्न लिया फिर आगे बढ़े ये पूरा 10 किलोमीटर का परिक्रमा रास्ता है। श्री वृंदावन धाम की परिक्रमा है वो उसको 2-2.5 घंटे लगते हैं चलकर और कदम कदम पर पवित्र स्थान है। हॉस्पिस के आगे हॉस्पिस जहाँ पर हमारा है उसको वराह घाट कहते हैं और वराह घाट यानी वराह भगवान ने वहाँ पर आकर विश्राम किया था जब पृथ्वी को अपनी कक्षा में रखा हिरण्याक्ष का वध किया तो यमुना किनारे यहाँ पर आकर विश्राम किया था उन्होंने, इसलिए उसका नाम है वराह घाट। और एक जगह है मथुरा में, वहाँ पर भी विश्राम किया था, उसका नाम है विश्राम घाट, वो भी यमुना के किनारे हैं। उसके आगे आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो वो जो पूरी भूमि है उसका नाम रमण रेती है। रमण रेती का अर्थ यह है कि जहाँ पर कृष्ण और बलराम जी अपने सखाओं के साथ में रमण किया करते थे, यानी आनंद लिया करते थे, खेलते थे, उनके खेलने की भूमि है वो। जहाँ पर हमारा मंदिर है, हॉस्पिस है, वो पूरा इलाका रमण रेती के नाम से जाना जाता है। उसके आगे आएंगे तो मदन टेर है, वहाँ पर मैंने आपको कहानी बताई थी बरसाने में कि एक वन में राधा और कृष्ण और गोपियाँ सब खड़े थे, तो कामदेव आए, उन्होंने बाण मारने के लिए निशाना बनाया है ना, और जब निशाने पे भगवान के चेहरे को देखा तो भाव विभोर हो गए बहुत, और कामदेव पिघल गए, उनके हाथ से बाण और धनुष फिसल गए, याद आ रहे हैं ना आपको। तो वो जगह है मदन टेर, वो रास्ता में आती है। उसके आगे जाएंगे तो हमारी इस्कॉन की गौशाला है, जहाँ पर आज के तारीख में 400 गायों की सेवा की जाती है, और पूरा गायों का उत्पादन भी वहाँ पर होता है, वो धूप और गोबर गोमूत्र सबका वस्तु बनता है वहाँ पर। उसके आगे आएंगे तो ये स्थान आता है कालिया घाट, और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मदन मोहन जी का मंदिर आता है, और ऐसे आगे जाते रहेंगे तो एक 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 स्थान आते रहेंगे, उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला है। तो आपको एकदम अच्छी तरह से वृंदावन को देखना है तो आपको 7 दिन निकाल के आना होगा, तो पूरे वृंदावन के स्थान पर जाकर बैठ कर कथा कर सकते हैं और परिक्रमा भी कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। परिक्रमा में बहुत सारे स्थान हैं और बीच में 7 मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हैं वैसे, लेकिन प्रमुख गौड़िया वैष्णवों के 7 मंदिर है, फिर एक बांके बिहारी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, फिर जहाँ पर हम लोग अभी जाने वाले हैं राधा वल्लभ जी का मंदिर है। ऐसे हमारे प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन में 5,000 से ऊपर मंदिर है, तो कितना एक दिन में देखेंगे आप इतने भीड़ में, इतवार के वाहनों के भीड़ में। तो एनीवेज इस जगह का संक्षेप इतिहास ऐसा है कि यहाँ से जहाँ से हम लोग आए उससे पीछे हम लोग 2 किलोमीटर जाएंगे ना तो एक स्थान आता है सौबरी मुनि आश्रम, उसका नाम है रामताल। रामताल ये यमुना जी के किनारे पे था, अभी भी है, और रामताल पे सौबरी मुनि ने तपस्या किया था, और सौबरी मुनि ने गरुड़ जी को एक बार शाप दिया था क्योंकि कालिया का उसका युद्ध हुआ था, उसके पहले गरुड़ जी उस यमुना जी में आकर मछली खाया करते थे, तो मछलियों ने जाके कंप्लेंट किया सौबरी मुनि को कि ये गरुड़ जी आके हमको खा जाते हैं, तो फिर गरुड़ जी को सौबरी मुनि ने शाप दिया कि आप यहाँ पर आओगे तो आप मर जाओगे। तो फिर संत के शाप के सामने वो फिर कभी आए नहीं वो, लेकिन गरुड़ जी बहुत महान वैष्णव हैं और उनको शाप दिया उन्होंने, तो उनके शाप का परिणाम मुनि पर हुआ, मुनि का भजन भंग हो गया और एक उस मुनि ने राजा के 50 कन्याओं के साथ शादी किया और बहुत सारे पुत्र हुए, और बहुत देर के बाद में वो होश में आए कि मैंने गलती किया। एनीवेज कालिया जो था ना नाग, वो कश्यप मुनि की एक पत्नी है कद्रु देवी, उनके द्वारा सांपों का वंश निर्माण हुआ है, तो शेष नाग भी उसी वंश के हैं, वासुकी नाग भी उसी वंश के हैं और कालिया भी उसी वंश के हैं। तो कालिया का और गरुड़ का एक बार घनघोर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में कालिया को गरुड़ जी ने बहुत परास्त किया, बहुत त्रस्त कर दिया, बहुत ही पीड़ा में डाल दिया उसको, इतना पीटा कि उसको पता था कि यमुना में न आने का शाप गरुड़ को प्राप्त है। तब जो उसको भय पैदा हो गया कि कालिया को भय पैदा हो गया कि मैं मर जाऊंगा अभी, गरुड़ जी मेरा वध कर देंगे, तो वो यमुना जी के जल में घुस गया और छुप गया। जब वो यमुना जी में गया तो गरुड़ जी कुछ नहीं कर पाए, फिर वो चले गए, तो कालिया ने फिर यहीं पर अपना निवास बनाया जल के अंदर। और कालिया के इतने भयंकर विष था कि यहाँ का पूरा जो उसको कहते हैं ना मराठी में कहते हैं डोह, हिंदी में कहते हैं दह, हम लोग पौंड कह सकते हैं उसको, वो बहते हुए पानी में एक ऐसा एक तालाब सा बन जाता है, अब बाकी पानी बहते रहता है, उसको दह कहते हैं। तो पूरा दह जो है वो इतना विषारी हो गया कि सब जीव जंतु मर गए उसके अंदर के, यहाँ तक कि वो जल के ऊपर से इस विष की वजह से वो विष का बाष्प ऊपर आता था, वेपर्स, और उसके संपर्क में जो पक्षी आता था वो भी मर जाता था, मर के पानी में गिरता था। उस दह के किनारे में जितने वृक्ष थे वो भी सब मर गए हैं उस विष के कारण, इतना भयंकर विष था उसका। तो इतना भयंकर विषैला वातावरण कालिया ने यहाँ पर निर्माण किया। तो भगवान को सब जानते हैं ना भगवान के क्या हो रहा है, तो भगवान ने एक लीला किया। उधर नंदगांव में गांव है गेंदोवा, गेंदोखर बोलते उसको, जहाँ भगवान ने गेंद खेला था। तो श्रीदामा जी गेंद लेकर आए थे खेलने के लिए, तो गेंद खेलते ना, अभी यहाँ से उड़ाते हैं, फिर वो कैच करता है, फिर वहाँ से वो खींचता है, तो ये पकड़ता है, फिर उसको और फेंकते हैं, तो बहुत दिन भर खेलते हैं इसे। तो गेंद खेलते खेलते भगवान ने जानबूझ के नंदगांव से गेंद फेंक दिया, जमुना जी में फेंक दिया उन्होंने जानबूझ के। तो श्रीदामा की गेंद थी, श्रीदामा को बड़ा गुस्सा आया, नाराज़ हो गया वो। बच्चे कैसे बोलते हैं, मेरी गेंद वापस ला के दो, आप भी क्या भी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि भाई जमुना जी में गिर गए, पता नहीं कहाँ गई वो, मैं आपको नई गेंद देता हूँ। बोल नहीं, मेरे को वही गेंद चाहिए। बच्चे कैसे होते हैं ना, माला तीस पाई जाएगी, मेरे को वही गेंद चाहिए, बहुत जिद हो गई। भगवान ने कहा मैं आपको दो गेंद दूंगा, लेकिन फिर बोला नहीं मेरे को वही गेंद चाहिए। बोलो ठीक है, फिर चलो जाते ढूंढने के लिए। तो सब लोग वहाँ से, बालक लोग हैं जो गाय को लेके, सब इधर आ गए। यहाँ पर आए तो चल के थक गए, प्यास लगी, तो सब लोग जमुना जी में उतरे, पानी पिया, तो सब लोग मर गए। जितने लोगों ने पानी पिया सब लोग यहाँ पर मृत हो गए जमुना किनारे पे। तो भयंकर घटना हो गई ना, तो गेंद के चक्र में आए थे। तो ऐसे भागवत में लिखा है कि जब सब लोगों का देहांत हो गया तो भगवान ने देखा कि अरे कालिया दह में इतना विष है कि पानी पीते सब लोग मर गए। तो उन्होंने सब के ऊपर अपना नज़र घुमाया ऐसे, तो सब लोग जीवित हो गए। भगवान की संजीवनी दृष्टि जो है, इस पर गिर जाती है वो जीवित हो जाता है। तो मरे हुए सब गाल बाल जीवित हो गए और डर गए बेचारे बहुत। तो फिर भगवान ने इस पेड़ पर भगवान चढ़े, ये कदम का पेड़ है, बहुत ही विशेष, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल पेड़ है ये कदम का पेड़ है। देखो कितना विशाल है, वो कृष्ण के समय का है, और आपको बताऊंगे उसके बाद में कि ये पेड़ पर भगवान चढ़े, अपना सर का फेटा जो है उतारा या कमर पे बांधा जोर से, और एक पहलवान की तरह शड्डू ठोका उन्होंने, बाजुओं को आवाज़ किया और फिर छलांग लगाई जमुना जी में। तो छलांग लगाई तो बहुत पानी उड़ा और भगवान गहराई तक पहुंच गए। कालिया के भय से उस जल में बहुत दिन तक कोई उतरा नहीं था, तो कालिया को आदत नहीं थी कोई जल में उतरने वाला बाहर का आदमी, लेकिन एक बालक इतना साहस करके पानी में उतर गया तो कालिया का बहुत क्रोध आ गया, तो कौन है ये बालक। और बालक को देखा तो इतना सुंदर बालक है, उसको देखकर मोहित भी हो गया और क्रोध भी आ रहा है उसको। तो उनकी जल के अंदर बहुत बड़ा युद्ध हुआ। कालिया ने अपने हरेक फन में इतना विष भरा था, तो हरेक फन से भगवान को मारने का कोशिश किया उसने, लेकिन भगवान ने उसको बहुत मुक्के मारे। फिर कालिया का जो पूंछ था उसने भगवान की ओर घुमा घुमा के भगवान को गांठ मार दिया और कसने लगा उसको, ताकि कस कस के उसको मार दें ऐसे। तो भगवान ने क्या किया, सबसे सूक्ष्म धारण किया रूप, और उसमें से वो निकल गए गांठ में से। तो उसमें बहुत कालिया को मुक्के मारे तो उसके मुंह से खून निकला, और वो खून जो है वो जल पे आया। हाँ, जल के अंदर युद्ध हो रहा है ना, तो खून निकला तो ऐसे जल के ऊपर सब खून आ गया। तो सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना, सब लोग वो डर गए सब लोग, अरे बाप रे हमारे कन्हैया जी को शायद वो कालिया मार रहे हैं। इतने में खबर पहुंची नंदगांव में कि गेंद गिरी, तो ये सब लोग वहां से इधर आए और कन्हैया ने जंप मार दिया है और वो खून बह रहा है। तो यशोदा माई, नंद महाराज, बड़े बड़े सब जो रोज तो नहीं आते ना, बालक लोग गाय चराते हैं, उस दिन बलराम जी भी नहीं आए थे, तो बलराम जी भी आ गए, यशोदा माई भी आ गई, नंद बाबा भी आ गए, बड़े बड़े बुजुर्ग भी आ गए। सब लोग देखने लगे, अरे कन्हैया जी पानी में, हम लोग सब बाहर। तो यशोदा माई, नंद महाराज पानी में कूदने का प्रयास करने, नहीं नहीं मैं जाऊंगी, मेरे बालक को बचाऊंगी। सब सखियां रोक रही, नहीं नहीं मैया मैं मत जाओ, सबको पकड़ के रखा है। वो अंदर आने की कोशिश कर रही है, रो रही है। फिर लोगों ने मना कर दिया तो बेहोश हो गई वो, नंद बाबा भी बेहोश हो गए, और सब लोगों के अंदर कितना टेंशन था। देखो समझा, हमारे में से एक आदमी कोई पानी में डूब रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो कितना परेशान रहेंगे हम लोग। ये तो कृष्ण थे, उनके जीवन और प्राण थे वो, सब लोग किनारे में और एक व्यक्ति उनका प्रिय जो है वो जल में है, तो बहुत उनको एंग्जाइटी हो गया, बहुत चिंता हो गई, दुख हो गया, बहुत पीड़ा हो गई, रोने लगे, चिल्लाने लगे। उतने में भगवान जब उसके कसने वाले पूंछ में से बाहर निकले, दोबारा वो बाहर निकले और जल के बाहर आकर उसने कालिया के सर पर छलांग लगाई। कालिया भी उसके पीछे पीछे ऊपर आया तो भगवान ने उसके ऊपर छलांग लगाई। कहते कालिया के 100 फन थे और 100 फन में बहुत सारा विष भरा हुआ था। इसके पहले भी एक कहानी हुई है, मैंने आपको बताया ना कल कि भगवान को डांस करना कौन सिखाती है, तो राधा रानी उनको जब नृत्य सिखाती है तो एक दिन वो सीख गए ना अच्छे तरह नृत्य करने के लिए। लेकिन एक दिन आए और वो अलग डांस कर रहे थे, तो बहुत इतराते मतलब बहुत गर्व से ऐसे गर्व करते करते आ रहे थे। तो गोपियों ने कहा इतना क्यों इतराते हो, इतराना मतलब टू बी प्राउड, ये सब डांस तो तुमने उनसे ही सीखा है राधा रानी से। बोलता है ये डांस नहीं सीखा है मैंने, ये मेरा खुद का है, बाकी सब डांस सीखा, ये अलग डांस है। तो बोले नहीं नहीं ये तुमने उनसे ही सीखा है, इतना गर्व करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको इतना ही गर्व है तुम्हारे ऊपर तो तुम ऐसा नाच दिखाओ हमको कि दुनिया में कभी किसी ने किया नहीं होगा। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपको ही इच्छा पूरी करूंगा, ऐसा अद्भुत डांस दिखाऊंगा आपको कि आप भी हैरान हो जाओगे। तो भगवान अभी कहाँ है, कालिया के सर पर आए हैं, है ना। अब ये कैसे भूमि है, फर्म है ना, फर्म यहाँ पर मैं डांस कर सकता हूँ, यहाँ पर डांस कर सकता हूँ। लेकिन अगर जो हिलने वाली भूमि है, ऊपर नीचे होने वाली, समझो ऐसे ऊपर नीचे होती है, उस पर डांस नहीं कर सकते ना। डांस करने वाले को स्थिर भूमि चाहिए, फिर वो अपना घुंघरू पहन कर डांस दिखा सकता है। तो भगवान ने अद्भुत डांस सिखाया, कालिया के सर पर डांस करना शुरू किया और जो जो कदम रखते थे वो सर जो है वो नीचे झुकता था। जब वो नीचे आता था तो उसके अंदर का विष जो है और अग्नि के साथ बाहर निकलता था। फिर अगला कदम और सर पे गिरा तो वो भी नीचे होकर उसमें से अग्नि और विष बाहर निकलता था और कालिया चिल्लाता था, लेकिन भगवान अपने कोमल चरणों से उसके ऊपर डांस कर रहे थे। ये गोपियाँ रोती थी हमेशा कि भगवान के जो चरण कमल है वो मक्खन की तरह मुलायम है, हाँ, और वो चलेंगे अगर नंगे पैर तो उनको पत्थर लगेगा, कांटे लगेंगे, और वो सोचकर वो रोती थी गोपियाँ। तो जो मुलायम मक्खन की तरह का चरण कमल उनके है, लेकिन जो कालिया के सर पर जब गिर रहे ना तो उसको लग रहा है वज्राघात हो रहा है, हाँ, तो इतनी वेदना हो रही है उसको, इसको हाथ में पकड़ने से भी ऐसा नरम मुलायम पैर हुआ करते थे उनके। वही पैर जब शत्रु के सर पर गिर रहे हैं तो उनको वज्राघात होने का अनुभव हो रहा है। तो भगवान ने उसके सारे थनों फनों पर नृत्य किया, ये सब नृत्य कर सारा विष निकाल दिया उसका। और अभी वो ऐसा पूरा टाइट था पहले विष से, एकदम ढीला हो गया वो, एकदम सा गलित कात्र बोलते हैं उसको, एकदम डिस्चार्ज हो गया पूरा कंप्लीटली। और जैसे उसका विष चला गया तो उसका सारा भाव भी जो द्वेष का था वो भी खत्म हो गया और वो पाप से मुक्त हो गया, क्योंकि भगवान के चरण कमल उसके सर पर गिरेगी नहीं। भगवान के चरण जो सभी देवता लोग चाहते हैं, तपस्या करते हैं, ऋषि मुनि भगवान के चरण चाहते हैं, वो उसको अनायास ही उसके सर पर चरण पड़ रहे हैं उसके, और चरणों के निशान भी सर पे आ रहे हैं उसके। थोड़ा भाग्य था कालिया का, तो भगवान के चरण उसके ऊपर पड़े हुए हैं, भगवान नाच कर रहे हैं, विष भी निकाल दिया पूरा, तो शुद्ध भक्त बन गया वो। तो भगवान उसको मारने वाले थे, उतने में उतनी सारी पत्नियां जो ना उनकी, देखो दिख रहे हैं आप बहुत सारी नाग पत्नियां थी उसकी, वो सब आई बाहर, अपने नाग बच्चों को सामने लेकर, गोद में लेकर भगवान के सामने आई। और वो नाग पत्नियां भगवान की बड़ी भक्त थी, उन्होंने अपने पत्नी को, पति को बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना किया है, वो पूरा प्रार्थना भागवतम में दिया हुआ है। तो नागपत्नियों ने कहा कि हमारा पति बड़ा पापी है, आपका शत्रु है, लेकिन हम आपके भक्त हैं, आप बड़े दयालु हैं, हमारे पति पर कृपा करना, उनको मत मारना, उनको जीवन दान देना। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी, हृदय द्रावक प्रार्थना सुनी, तो भगवान प्रसन्न हो गए और कालिया को उन्होंने मुक्त कर दिया। तब तक कालिया भी भक्त बना था और हाथ जोड़कर भगवान के सामने आया और भगवान ने कहा तुरंत यहाँ से चले जाओ। तो वो कहा मैं नहीं जा सकता यहाँ से बाहर, तुम्हें गरुड़ का भय है, जैसे बाहर निकलूँगा तो गरुड़ जी मुझ पर हमला करेंगे, तो कैसे होगा? भगवान ने कहा निश्चिंत होकर यहां से बाहर जाना, क्योंकि जब गरुड़ आपके सामने आएगा आपके युद्ध करने के लिए, आपके 100 फनों पर मेरे चरणों का चिन्ह देखेगा और युद्ध करने के बजाय आपको वंदन करेगा। वो जिसके शीश पर मेरे चरण चिन्ह होते हैं गरुड़ जी उसका नुकसान नहीं करते हैं, उस पर हमला नहीं करते, इसलिए आप निश्चिंत होकर चले जाना। जब भगवान ने गरुड़ की ओर से कालिया को अभय दिया तो शुद्ध भक्त बना हुआ कालिया, पहले तो वो द्वेषी था बहुत, अभी शुद्ध भक्त बना हुआ है, वो अपने पत्नियों के साथ में यहाँ से चला गया और आज हमारे वर्ल्ड में एक देश है उसका नाम है क्या है, फिजी आइलैंड्स। हाँ आपने पढ़ा है ना, कभी किताब में पढ़ा होगा फिजी आइलैंड्स, वहाँ पर कालिया जाके रह गया। तो आज भी फिजी में आप जाएंगे तो उनका एक बड़ा कालियानाग का मंदिर है, उसकी वो पूजा करते हैं। तो इतनी सी संक्षेप में कहानी है, भागवत में उसको बहुत विस्तार से बताया है कैसे भगवान ने युद्ध किया, कैसे एक एक भगवान के चरण का आघात होने पर कालिया दर्द से बेहाल हो गया, और कैसे भगवान का आघात होते ही सारे विष बाहर निकलने लगा, और कैसे कालिया शुद्ध हो गया, ये विस्तार में कहानी दी गई है। हमारे पास समय बहुत कम है तो हम आपका इसका सार बताना चाहते हैं कि ये कालिया कालिया दमन कहते हैं उसको, बाकी कैसे कहते हैं बकासुर वध की कथा, सत्यनारायण प्रभु हरे कृष्णा, तो बाकी जगह बोलते हैं ना बकासुर का वध किया, अगासुर का वध किया, केशी का वध किया, कालिया का वध नहीं किया, कालिया का दमन किया। तो क्या कहते हैं, कालिया दमन लीला कहते हैं। तो कालिया दमन लीला जो है वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब लोग भगवान के लिए हमारे मन में ईर्ष्या है, द्वेष है, इसलिए भगवान को छोड़कर हम लोग यहाँ पर आए हैं, और वो द्वेष ही हमारे यहाँ के जीवन का मूल कारण है। अगर हम यहाँ पर जी रहे हैं तभी इसका मतलब है हमारे मन में अभी भी भगवान के लिए द्वेष है, भगवान के लिए नहीं तो भगवान के भक्तों के लिए है, और दूसरों का भला हम देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते, किसी की उन्नति हो रही है, किसी की वृद्धि हो रही है तो हम लोग उसको सहन नहीं कर सकते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये द्वेष जो है, जैसे मैंने आपको बरसाने में बताया था कि काम क्रोध लोभ मद मोह जो है वो हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन द्वेष जो है वो हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। द्वेष एक ऐसी वस्तु है, एनवी, हाँ एक ऐसी वस्तु है जो हमको भगवान से अलग कर देती है। द्वेष जिस भी दिल में होता है उसमें भगवान की भावना स्थापित नहीं हो सकती है। अगर आपके मन में द्वेष है तो आप भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति का नाटक कर सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं कर सकते। तो ये द्वेष जो है ये इसका प्रतीक कालिया है, इसका विष जो है उसके द्वेष का प्रतीक है, और उस द्वेष की वजह से वो इतने भयंकर राक्षस बन गए थे, सब जीवों के लिए आतंक कर रहे थे, वहाँ पर सब जीवों के लिए दुख पहुँचा रहे थे, सारे जीव सृष्टि नष्ट हो गई थी। लेकिन ये एक पेड़ जो है ये जीवित था, इसका अंत नहीं हुआ था। इसके दो कारण बताए गए शास्त्र में कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, आपको मालूम है सब लोगों को, कितने लोगों को पता है समुद्र का मंथन हुआ था, क्षीर सागर का मंथन हुआ था अमृत प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले उसमें से विष निकाला, विष निकल गया, फिर वो शंकर जी ने पिया, उसके बाद फिर मंथन शुरू हुआ, उसके बाद 14 रत्न का निर्माण हुआ, लक्ष्मी देवी का भी निर्माण हुआ, ऐरावत हाथी का निर्माण हुआ, हाँ बहुत सुंदर सुंदर वस्तु निकले उसमें, कुछ 14 रत्न कहते हैं, एक लक्ष्मी है उसमें से, तो उसके बाद में अमृत निकला है। तो जब अमृत निकला तो गरुड़ जी को भगवान धन्वंतरी ने वो कलश दे दिया अमृत का, तो उसके पीछे सब राक्षस भागने लगे उसको पकड़ने के लिए, तो गरुड़ जी उसको लेकर भागने लगे। तो गरुड़ जी ने उस समय इस पेड़ पर आकर विश्राम किया था और कुछ अमृत की बूंदें इस पेड़ को दे दी थी, ये जानते हुए कि भगवान आएंगे यहाँ पर लीला करेंगे आगे, तो उन्होंने कुछ अमृत के बूंद डालकर इस वृक्ष को अमर बना दिया था। एक और जगह बात आती है कि ये वृक्ष भी गुजर गया था, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपने चरण कमल इस पेड़ पर रखे तो भगवान के चरण के स्पर्श होते ही वो पुनः जीवित हो गया, और फिर भगवान ने उस छलांग लगाई। हाँ तो इसके पीछे आपको देखना है जाके, जब आप कथा समाप्त होगी और आप उठेंगे, परिक्रमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो पीछे पेड़ पर ही एक मटका बना हुआ है, उसको देखने को मत भूलना, बहुत अद्भुत अद्भुत दर्शन है वो अमृत का कलश है जो गरुड़ जी ने इस पेड़ पर कुछ समय के लिए रखा था और उसमें से कुछ अमृत इस पेड़ पर डाला था। ये बड़ा ही अद्भुत कल्प वृक्ष है, इसको अमृत भी प्राप्ति है, भगवान के चरण स्पर्श की प्राप्ति है, भगवान की कृपा की प्राप्ति है और ये दिव्य कल्प वृक्ष है। इसलिए आपकी मनोकामना जरूर यहाँ पर आप प्रार्थना करना, भगवान की भक्ति मांगना। और हम लोगों को यहाँ पर प्रार्थना करना है कि कालिया जैसे द्वेष से भरकर लोगों को इतना कष्ट देने वाला व्यक्ति बन गया था, एक राक्षस जैसा बन गया था वो, लेकिन भगवान ने ही आकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब भगवान ने उसके ऊपर अपने चरण रख के उसका सारा विष निकाल दिया, उसको शुद्ध कर दिया, उसको पवित्र बना दिया, उसको भक्त बना दिया, संत बना दिया, उसको पूज्य बना दिया, यहाँ की आज भी लोग उनकी कालिया की भगवान के संत के भक्त के रूप में पूजा करते हैं, हाँ फिजी आइलैंड में। तो हमको यहाँ पर प्रार्थना करनी चाहिए कि द्वेष को मन से निकालना कोई आसान बात नहीं है। द्वेष इतना गहरा होता है कि आप बोलेंगे मैं तो भगवान के नाम का जप करता हूँ, मैं क्या द्वेष करता हूँ उनका, लेकिन भगवान का अगर हम भूल गए भगवान को, तो भगवान के भक्तों का द्वेष करते हैं। कोई भगवान की पूजा कर रहा है, कोई भगवान के लिंग पे दूध दे रहा है, कोई भगवान को भोजन खिला रहा है, उसकी आरती कर रहा है, तो द्वेषी लक्ष्यों को सहन नहीं होता है वो, बोलते क्यों पत्थर की पूजा करते हो, इंसानों की पूजा करो, इंसानों की सेवा करो, क्यों पत्थर पे दूध डालते हो, वो 20 रुपये का खाना खिलाओ लोगों को, ऐसे बोलते हैं। ये द्वेष का प्रतीक है। इससे क्या पता चलता है, ये भगवान का द्वेषी है, इनको भगवान का पूजा सहन नहीं होता है। तो वो द्वेष जो है, वो अगर हम भगवान को भूल गए हैं तो वही द्वेष भगवान के भक्तों के लिए प्रकट होता है, फिर भक्त से हम ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये द्वेष बहुत खतरनाक है। हम लोग कितना भजन करेंगे, जप करेंगे, तपस्या करेंगे, उपवास करेंगे, दर्शन करेंगे, दान पुण्य करेंगे, लेकिन मन में ये द्वेष को बनाए रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बार बार आएंगे, ठोकरे खाएंगे, मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर दुख भोगेंगे। तो ये द्वेष से मुक्त करने के लिए आपको यहाँ पर प्रार्थना करनी है, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान ने अपने पैरों के स्पर्श से कालिया को द्वेष से मुक्त कर दिया था, द्वेष के विष से मुक्त कर दिया था। हमारे अंदर वो विष अभी भी है द्वेष का, इसलिए हम इतना जल्दी प्रगति नहीं कर सकते। इस ये स्थान जो है, यहाँ पर आप बैठिए, प्रदक्षिणा कीजिए, इस पेड़ को स्पर्श करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मुझे पता हो या ना पता हो कि मुझ में कितना द्वेष है, या मुझे पता नहीं हो कि मैं द्वेषी हूँ, समझो ऐसा आपको लगता है मैं कहाँ द्वेषी हूँ, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे अंदर द्वेष है तो भगवान आप कृपा करें और मुझको दोष से मुक्त कर दें। क्योंकि जब तक द्वेष है तो भगवान की भक्ति भगवती प्राप्त नहीं कर सकती। आप चाहे जितनी सेवा करो भगवान की, द्वेष को मुक्त किए बिना सही भक्ति का उगम नहीं हो सकता है, निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये जगह जो है प्रार्थना करने की जगह है। यहाँ पर एक वृंदावन के बहुत ही प्रेमी संत थे, प्रबोधानंद सरस्वती, जिन्होंने राधा सुधानिधि ग्रंथ लिखा है, उनकी समाधि भी पीछे है और ये उन्होंने यहाँ भजन किया है, यहाँ पर रहते थे वो, उनकी समाधि भी यहाँ पर है। यहाँ पर वो कालिया देह का वृक्ष है, बहुत ही पवित्र स्थान है। अभी वो ट्रैफिक वैफिक आवाज़ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उस स्थान की महिमा कम नहीं होती है। यहाँ भगवान ने कालिया का दमन किया है और यहाँ पर जमुना जी को भी विष से मुक्त कर दिया। जैसे कालिया चले गए तो जमुना जी भी विष के प्रभाव से मुक्त हो गई। तो इस शास्त्र में लिखा है कि सबसे बड़े पर्यावरणवादी भगवान हैं, सब लोग सुन रहे हैं ना, सबसे बड़े पर्यावरणवादी भगवान हैं, उन्होंने यहाँ पर कालिया दमन करके जल का शोधन किया, यानी कि ही प्यूरिफाइड द वाटर, जल तत्व को शुद्ध कर दिया। उन्होंने तृणावर्त को मारा तो वायु तत्व को शुद्ध कर दिया। जब दावानल का पान किया, एक जगह यहाँ वृंदावन में है, वहाँ पर भगवान ने आग पी लिया, जंगल की आग को पी लिया और ख़त्म कर दिया। अग्नि तत्व को शुद्ध कर दिया। जब यमासुर को मारा तो उन्होंने अवकाश तत्व को, स्पेस तत्व को शुद्ध कर दिया। और जब गोकुल में माटी खाई तो उन्होंने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया। तो पंच महाभूतों को लीलाओं के माध्यम से भगवान ने शुद्ध कर दिया है। तो यहाँ पर भगवान ने अपने अस्तित्व से लीला करके जल तत्व को शुद्ध कर दिया है। तो भगवान सर्व शुद्धि कारक है, सर्व पवित्र कारक है, सर्व शुभ कारक है। आप प्रार्थना करेंगे तो आपको कृपा करेंगे, और कृपा करेंगे तो हमारा द्वेष जो अंदर छुपा हुआ है, जो पता भी नहीं हमको कि हम द्वेषी हैं, उसको भगवान उखाड़ के देंगे। और जब वो द्वेष उखाड़ेंगे भगवान, तो हमारे अंदर की भक्ति जागृत होगी और हम कालिया जैसे द्वेष मुक्त होकर भगवान के शुद्ध भक्त बनेंगे। बोलिए कालिया दमन श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।